इस्लामी इनकलाब पाकिस्तान में खुश आमदीद। जैसा कि आज आप हमारी पहली पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और हमारे हाजरीन को खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। हमारे तमाम हाजरीन से एक गुजारिश है कि नाम को देख के प्लीज़ किताब को जज ना करें। इनकलाब का बेसिकली मतलब कल्ब, कल्ब का मतलब तब्दील। कल्ब वो चीज़ है जो कि तब्दील होने वाली है और इसको चेंज करना चाहिए। दिल को, जब तक आपका दिल चेंज नहीं होगा तब तक आपकी निगाह नहीं चेंज होगी। और इस्लामिक चेंज और इस्लामिक रिवोल्ट, ये बेसिकली क्यों पाकिस्तान में, क्योंकि पिछले 74 सालों के अंदर हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हैं लेकिन हम एक इस्लामिक स्टेट नहीं बन पाए। इमरान ख़ान चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले कि एक वो रियासत बनाना चाहता है जो कि मदीना पर मुश्तमिल रियासत है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब एक चीज़ शायद नज़रअंदाज कर देते हैं कि इस्लाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत वो रियासत बनाई जो कि सूद और कर्ज़ से पाक थी। आज हम जितना मर्ज़ी इम्पोजमेंट कर लें इस्लाम की, इस्लाम की पाकिस्तान में नफाज की, लेकिन जब तक ये मुल्क और इसके कारोबार अगर सूद के ऊपर चल रहे हैं तो वो बहुत 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 देर से हो सकता है तरक्की करें, करेगा तरक्की, क्योंकि इस मुल्क को अगर अल्लाह पाक ने पिछले 74 सालों में बचाया रखा है और इसकी हिफाजत करने वाला भी वही है, इनमें से हम में से कोई भी नहीं है इसकी हिफाजत करने वाला। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो मुल्क है जो इमरान खान जिस तरह साहब कहते हैं कि पता नहीं क्यों ये मुल्क बहुत ज़्यादा खैरात करता है, चैरिटी करता है, लेकिन सबकी अक्ल में बात आनी चाहिए कि 500 हज़ार, 2 हज़ार, 5 हज़ार कोई भी दे देगा, लेकिन जब बात आती है साल बाद 15 हज़ार देने की टैक्स की और साल बाद ज़कात देने की, 15 हज़ार, 20 हज़ार ज़कात देने की, ये तो मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, और कुछ लोगों की ज़कात माशाल्लाह से पाकिस्तान में 2.5 लाख, 2.5 करोड़ भी जाती हैं, और 2.5% के ऊपर 2.5 करोड़ ज़कात, जिन लोगों के पास अरबों रुपया बैंक अकाउंट में है उनकी 2.5 करोड़ बनती भी हैं सर, लेकिन कोई भी नहीं देता ज़कात, बहुत रेयर लोग देते होंगे। और ये वही लोग हैं जो कि आज मज़े की बात के साथ इस बिल के अगेंस्ट जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, घरेलू तशद्दुद और इसकी रोकथाम और हिफाजती तदबीर के ऊपर, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो बिल 2021 के अंदर जून में सेनेट में पेश किया, आज वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के ज़ेरे बहस चल रहा है, और हमारे माशाल्लाह से हमारे इस्लामिक स्कॉलर और हमारे सियासतदान ओपोजिशन, वो ऐसी क्या चीज़ है इस कानून के अंदर जो वो नहीं चाहते कि ये कानून, ये ऑर्डिनेंस इस मुल्क के अंदर इस आवाम को दिया जाए? ऐसा क्या है इस कानून के अंदर, ऐसा क्या है इस लॉ के अंदर जो वो नहीं चाहते कि ये लोगों की हक में उनको दिया जाए, जहाँ पे लोग इसको इस्तेमाल करके अपने तहफ़ अपनी आज़ादी, अपनी सालमियत को सिक्योर कर सकते हैं? ये वो कानून है जहाँ पे एक अगर औरत के साथ, किसी बच्चे के साथ अगर बदकारी अगर होती है, कोई करता है, तो वो उस शख्स के ख़िलाफ़, वो उस कल्प्रेट के ख़िलाफ़ अगर केस करना चाहे तो वो खुल के कर सकता है। अगर उसके लिए अगर एक औरत भी एक विटनेस है तो उसकी गवाही कबूल की जाएगी, जहाँ पे जिस माशरे के अंदर हमारे आज भी मौलवी और मुल्ला जहाँ पे हैं इस बात के ऊपर अपना इजहार और कुफराना अमल कहते हैं कि डेफिनेटली हम मुसलमान मुसलमान को काफिर डिक्लेयर कर देते हैं, और ये मौलवी उन्हीं लोगों को डिक्लेयर करते हैं काफिर जहाँ पे वो औरत को एक गवाही, बराबर गवाही का हक देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस्लाम के नज़रिए से देखा जाए तो कुछ मामलों के ऊपर एक औरत की गवाही आधी कंसीडर की जाती है, जब तक कि दो औरतें ना हों तो उनकी गवाही एक मर्द के बराबर नहीं कबूल की जाती। लेकिन क्या वो सिर्फ़ माल की खरीदो फरोख्त और या किसी की ज़मानत देने के हद तक है, और या फिर किसी जुर्म के हक में गवाही देना वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया जाता है ये कानून और ये शर्त? क्योंकि हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो इस्लाम अगर 1400 सालों के अंदर इवॉल्व हुआ है बहुत सी चीज़ों के अंदर, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ जिस मुल्क के अंदर अगर एक इलेक्शन, एक वोट की हक जो है वो पूरा एक औरत को मिलता है, तो वहीं एक कानून में जाके उस औरत की गवाही को आधा क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि तो बहुत बड़ा सवाल है हमारी स्कॉलर्स के लिए, हमारे पॉलिटिशियंस के लिए। और लेकिन आखिरकार ये एक ऐसा कानून जो कि हमारी आवाम के हक में एक उन गमज़दा ख़वातीन औरतों के ख़िलाफ़ जहाँ उनके मर्द उनके शोहर उनको तलाक किया दूसरी शादी की धमकी देते हैं, ये उनके ख़िलाफ़ कानून है कि गुस्से के अंदर और न जाने किस किस सूरत हाल में हमारे मर्द जो हैं हमारे पाकिस्तान के मर्द वो औरतों को धमकी देते हैं तलाक की दूसरी शादी की बहुत सी वजूहात के ऊपर के बेटा नहीं हो रहा बच्चा नहीं हो रहा, 3 दफ़ा 4 दफ़ा बेटियां हो गई हैं बेटा नहीं हो रहा, बहुत से ऐसी वजूहात हैं। और जहाँ पे हमारे चाइल्ड अब्यूज़र्स हमारे घर के अंदर हमारे आसपास हमारे रिश्तेदारी चाइल्ड अब्यूज़र्स होते हैं पेडोफाइल्स, दे आर इन आर सोसाइटी इन आर होम्स इन आर हाउसेज, जो कि सच बात है। हमारा एक बच्चा जो एक मदरसे के अंदर तालीम लेने जाता है जिस मदरसे के अंदर लौंडाबाजी चल रही है जिस मदरसे के अंदर लड़के लड़के आपस में लगे हुए हैं जहाँ पे तरबियत इस तरह की दी जा रही है, वहाँ पे आपको क्या चाहिए? वहाँ पे ऐसा कानून नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? जिस माशरे के अंदर बेटा जो है वो माँ के ऊपर तशद्दुद करता है उस माशरे के लिए अगर ऐसा कानून नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? क्यों? क्योंकि हम सारे बेलगाम हो चुके हुए हैं। हम मुसलमान वो मुसलमान कौम जो कि वाकई डंडे के बगैर नहीं गुजर सकती, लेकिन ये मुसलमान कौम खुद उठ भी नहीं सकती जब तक इसके अंदर खुद अपनी रोशनी ना आए कि ये वो है क्या, ये कौम क्या है, ये वो उम्मत क्या है। लेकिन हम बॉलीवुड कल्चर से वेस्टर्न कल्चर से इतने इंस्पायर्ड हैं, यूरोपियन लॉ से हम इतने इंस्पायर्ड हैं कि हम सबको अपनी आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, हर किसी को आज़ादी चाहिए, लेकिन एक अच्छाई के ख़िलाफ़ और एक बुराई के ख़िलाफ़ कितनी और क्या आज़ादी चाहिए ये हमें बतौर एक इंसान ही पता लग सकता है। एक जानवर और एक दरिंदे के माशरे में कोई ओपन सोसाइटी में कोई इख्तियार नहीं है, कोई उसका जवाज़ ही नहीं बनता कि वो रह सके, जिसको पता ही नहीं है कि एक औरत की इज़्ज़त क्या है, एक मर्द की इज़्ज़त क्या है, एक बच्चे की इज़्ज़त क्या है, एक माँ की इज्जत क्या, एक बहन की इज्जत क्या है, एक इज्जत क्या है, बेगैरत को गैरत की क्या समझ? और ऐसे बेगैरत लोगों के लिए जो कि मैं अगर लघवी मानी अगर मैं यूज़ करूँ जो कि गलत नहीं है, उनका अगर ठिकाना 1 लाख जुर्माने या मिनिमम 20,000 जुर्माने के तहत 6 महीने की जेल या साल की जेल या 3 साल की जेल हो तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, और ऐसे लोगों को जेल के अंदर ही होना चाहिए और ऐसे लोगों को जुर्माना ही अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारे माशरे को हमारे बच्चों को हमारी ख़वातीन को जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं जो तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं उनका अंजाम ऐसा ही कानून उनको शिकंजे में ले सकता है, उनका फांसी का फंदा बन सकता है और उनके हाथों में हथकड़ियाँ डाल सकता है और उनके पाँव में जंजीरें घुसेड़ सकता है। और सॉरी फॉर ऑल दोज पीपल जिनको लगता है कि ये कानून सही नहीं है, सर हमें डंडे की ज़रूरत है, जब तक हमें डंडा नहीं मिलेगा हम कंट्रोल में नहीं आएंगे। आपका क्या ख्याल है कि ऐसे कानून ऐसे दरिंदों को क्यों नहीं होना चाहिए जेल में, ऐसे लोगों को जो ख़वातीन को जो अपनी बेगम को दूसरी शादी की या तलाक की धमकियां देते हैं उनको क्यों नहीं होना चाहिए जेलों में, जो एक बच्चे के साथ एक छोटी बच्ची के साथ एक 4 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करते हैं उनको क्यों नहीं जेलों में, या उनको क्यों नहीं फांसी देनी चाहिए उनको ऐसे जुर्म का? और क्यों आप उनके ऊपर एक ऐसा ऐसा कानून नाफिज कर देते हैं जो कि शुक्र अब चेंज हो गया है केमिकली कास्ट्रेशन, जो कि खुद बाकायदा एक जुर्म है एक गुनाह है, आप उसको आपने हैरानी के तौर पे आपने उसको मुल्क का एक कानून बना दिया जो कि शुक्र आपने चेंज कर दिया है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए या तो कोड़े हैं या इनके लिए सर जेल है, या फिर अगर आप इनके लिए अच्छा करना चाहते हैं जैसा कि डेनमार्क के अंदर सॉरी जर्मनी के अंदर एक कंपेन उठी उन लोगों के ख़िलाफ़ जो मोलेस्टर्स हैं जो चाइल्ड अब्यूज़र्स हैं उनको बताया कि ये जो आप इर्तकाब कर रहे हैं ये आप अपनी हवस का कर रहे हैं, ये आप अपने इसके अंदर कोई शर्माने की बात नहीं है, लेकिन आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये ज़हनी बीमारी है, आपको जुर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके इलाज कराएं अपनी ज़हनी मरीज़ का। क्यों? क्योंकि अगर जिसको दिल का मरीज़ होता है हम उसको मार नहीं देते, हम उसका इलाज करते हैं। इसी तरह जो दिमागी मरीज़ से भरे पड़े हैं, इस हवस के मर से भरे पड़े हैं, इनका इलाज होना चाहिए और इनका इलाज किया जाना चाहिए। मेरे जैसे, हम जैसे लोग ही इलाज कर सकते हैं, और इलाज तब कर सकते हैं जब वो एक्सेप्ट करें कि दे आर पेशेंट, दे आर मेंटल पेशेंट। अगर वो इस चीज़ का इर्तकाब नहीं करते तो सॉरी टू से सर, उनके लिए जेल या उनके लिए कैपिटल पनिशमेंट ही है। और इस चीज़ की इजाज़त राइटफुली हमारा कुरान, हमारा दीन देता है।